അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യം വആദമു ബൈനൽ മായ വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഔദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹു വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലാ നബി يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم آج ہم آپ کے سامنے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کی بارے میں بیان کریں گے. اس مختصر سی نشست میں اس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنا ناممکن ہے. وقت مختصر ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں اور چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دیتا. ایسا نہیں کہ انسان یہاں آ کر کچھ بنتا ہے، وہیں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر صلاحیتیں اجاگر ہوتی. امام اہل سنت کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. اور ایک فتنہ نہیں، وہابیت، دیوبندیت، مرزائیت اور نہ جانے کتنے فتنے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن امام احمد رضا نے ان سب کا منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ دوبارہ ان کو پھر اٹھنے کی جرت نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال ذہانت عطا فرمائی. آپ کی حیات مبارکہ پر تفصیلی روشنی ڈالنا تو ناممکن ہے، میں صرف اتنا کہوں کہ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے انہیں عظیم ذہانت اور فطانت عطا فرمائی. بعض روایتوں میں آیا کہ انہوں نے ایک مہینے کی مدت میں کلام پاک حفظ کر لی. اگر آپ حساب لگائیں تو ایک دن میں ایک پارہ، یہ معمولی بات نہیں. اسی طرح تمام علوم متداولہ بہت جلد طے کیے اور غالباً 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اور وہ ایسا فتویٰ کہ جس پر کلام کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں. کسی نے کوئی غلطی نکالی ہو، یہ تم نے چیز غلط لکھی، یہ فلاں چیز غلط لکھی، یہ عبارت غلط لکھی، ایسا نہیں. جب وہ فتویٰ آپ کے والد گرامی نے دیکھا اور دیگر علماء نے دیکھا تو اس کی تائید کی کہ ہاں یہ بالکل درست ہے. ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کو یہ مقام کیسے ملا؟ کیا علم اور فضل سے؟ عالم تو ان کے زمانے میں بہت سارے تھے، محدث بہت تھے، مفتی تھے، فقہا تھے، متکلمین تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، لیکن ان تمام معاصرین میں مقام ملا تو امام احمد رضا کو ملا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے وہ ہر جگہ مقبول. جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس کو مقبولیت حاصل ہو گئی پوری کائنات میں مقبول ہے، اور جو وہاں سے مردود ہو گیا اس کا پھر کہیں ٹھکانہ نہیں. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ درس نظامیہ کا پورا کورس ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور درس نظامیہ کا پورا کورس دیگر جو مخالفین ہیں ان کے مدارس میں پڑھایا جاتا. بخاری وہ بھی پڑھتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، مسلم وہ بھی پڑھتے ہیں، مسلم ہم بھی پڑھتے ہیں، صحاح ستہ مکمل وہ بھی پڑھتے ہیں، مکمل ہم بھی پڑھتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم مسرور ہو کر پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کر پڑھتے ہیں. ہمارے علماء پڑھاتے ہیں تو عشق رسول میں ڈوب کر پڑھاتے ہیں. جو کوئی حدیث سامنے آتی ہے بتاتے ہیں، دیکھو اس سے سرکار کی یہ شان ظاہر ہوتی، इससे ये अजमत जाहिर होती है, इससे ये बुलंदी जाहिर होती है, इससे ये रिफा जाहिर होती है। और वो बदबख्त जब पढ़ाते हैं तो उसमें गुस्ताखी का पहलू निकालते हैं। देखो इससे पता चला कि सरकार को इल्म नहीं था, इससे पता चला कि इल्म नहीं था, इससे पता चला, वो इसी में रहते हैं। फर्क है इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता ये चला मकबूलियत इस दुनिया में सिर्फ बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। हम सोचते हैं हम किसी चैनल पर आ जाएं तो मकबूल हो जाएं, सारे लोग देखेंगे, शोहरत होगी, हम टीवी पर आ जाएं तो मकबूल हो जाएं, अखबारात में फोटो आ जाएं तब मकबूल हो जाएं, इश्तहारात लग जाएं तब मकबूल हो जाएं, तकरीरें हो जाएं मकबूल हो जाएं, कोई मजमून लिख दें मकबूल हो जाएं। नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मकबूलियत चैनल से नहीं है, मकबूलियत टीवी से नहीं है, मकबूलियत तहरीर से नहीं है, मकबूलियत तकरीर से नहीं है, मकबूलियत बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल होने की वजह से। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल हो गया उसको फिर किसी चैनल की जरूरत है। इमाम अहले सुन्नत के जमाने में कोई चैनल था? 99 साल हो गए आपके विसाल को, कोई चैनल नहीं था, टीवी नहीं था, फैक्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं, जाहिरी जरिया मवासलात कोई नहीं, लेकिन मकबूलियत मिली या नहीं मिली? मिली। कैसे मिली? एक चैनल था जो रूहानी चैनल, जो मदीने तैयबा से चल रहा, एक रूहानी चैनल, उसी को आला हजरत ने पकड़ा और उसी चैनल ने पूरी कायनात में मकबूल बना। बात समझ आई? एक चैनल मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कल्ब में रासिख कर लिया। आप उनकी तहरीर उठा कर देखें, अशार देख लें, किताबें देख लें, कंजुल ईमान देख लें। सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश कर दूं, वजदा का दौलन फहदा, दाल के माना गुमराही, दाल के माना भटका हुआ और दाल के माना मोहब्बत में खुद रफ्ता। कोई तर्जुमा कर रहा है माजल्ला सुम्मा माजल्ला, हमने आपको बहका हुआ पाया तो अपनी तरफ रा दी। कोई तर्जुमा कर रहा है माजल्ला सुम्मा माजल्ला, हमने आपको भटका हुआ पाया तो रा दी। लेकिन आशिक रसूल बरेली में बैठकर तर्जुमा करता है, वजदा का दौलन फहदा, ए महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रा दी। अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रा दी। क्यों? कोई एक जुमला भी ऐसा ना हो जो सरकार की बारगाह में गुस्ताखी का अदना सा भी शायबा पैदा हो। वो जानते थे कोई कितना बड़ा मुहद्दिस हो, कितना बड़ा मुफ्ती हो, कितना बड़ा शायर हो, कितना बड़ा मुतर्जिम कुरान हो, अगर बारगाह रिसालत का गुस्ताख है तो सारे उलूम फनून उसके मुंह पर मार दिए जाए, बल्कि ईमान से खारिज हो जाएगा। इसलिए तहरीर में भी अदब रसूल, तकरीर में भी अदब रसूल, तर्जुमे में भी मोहब्बत रसूल, हर चीज में इश्क में डूब कर इमाम अहले सुन्नत काम कर रहे हैं। मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि बारगाह रिसालत में अदना सा भी शायबा गुस्ताखी का पैदा ना हो जाए। लियग़फिर अल्लाहु लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खरा। इस आयत के तहत बहुत से लोगों ने तर्जुमा किया, किसी ने तर्जुमा किया अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। माज़र, कोई तर्जुमा करता है अल्लाह ने आपके अगले पिछले खताओं को माफ कर दिया। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी जब इस आयत पर आते हैं, फरमाते हैं महबूब आपके सबब से आपके अगलों के और आपके पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। यह है मोहब्बत रसूल वाला तर्जुमा, यह है इश्क रसूल में डूब कर करने वाला तर्जुमा। तर्जुमा ही बता रहा है कि आशिक कर रहा है, तर्जुमा ही बता रहा है कि मुअद्दब इंसान कर रहा है, बारगाह रिसालत का अदब करने वाला इंसान कर रहा। तहरीर बता देती, तकरीर देख लो, तफसीर देख लो, तर्जुमा देख लो। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियत अता फरमा दी। एक शायर ने शेर कहा, उस जमाने में मदीना मुनव्वरा में सरकार का जो रोजा मुबारक है गुंबद शरीफ, उसके चारों तरफ यानी मस्जिद नबवी के बाहर की जानिब दरख्त थे, खजूर के दरख्त। आजकल तो नहीं है, सब साफ हो गया, पहले जमाने की बात, अरसे दराज पहले। एक शायर ने शेर कहा, हाजिर हैं सब दरख्त गुंबद शह वाला के सामने। दरख्त लगे थे ना, गुंबद शरीफ नजर आ रहे सामने, इधर दरख्त लगे। हाजिर हैं सब दरख्त गुंबद शह वाला के सामने, मजनू हूं जैसे खेमे लैला के सामने। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, कमाल कर दी। एक तो ये वाह वाह करने वाले ही बेड़ा गरक कर देते, वो समझते नहीं कि शेर है क्या। जरा जरा सुना, वाह 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 कमाल कर दिया, अरे आपने कमाल कर, शायर खुश हो रहा है। अब बजाहिर तो इसमें कोई चीज नजर नहीं आती, आप भी वाह वाह कर लेंगे। हाजिर हैं सब दरख गुंबद शह वाला के सामने, मजनू खड़े हो जैसे खेमे लैला के सामने। आला हजरत ने सुना, फरमाया गलत है, ये गुस्ताखी है, बुलाओ इसको मेरे पास। शायर आ गया, क्या लिख दिया तुमने, ये तुमने मेरे आका के गुंबद को खेमे लैला बना दिया। लैला की क्या हकीकत है, लैला की क्या औकात है, जो रसूल की शान है उसके सामने तुम इसको लेकर आ रहे हो, गुस्ताखी है ये। पहला मिसरा सही है, दूसरा गलत है। वो डर गया, हुजूर इसलाह फरमा दीजिए, इसलाह फरमा दीजिए। फरमाया आप सुनो, पहला मिसरा तो सही है, हाजिर हैं सब दरख गुंबद शह वाला के सामने, और तुमने क्या कहा, मजनू खड़े हो जैसे खेमे लैला के सामने। गुंबद खिजरा को खेमे लैला बना दिया, नहीं ये नहीं है, असल ये है, मैं इसकी इसलाह करता हूं। हाजिर हैं सब दरख गुंबद शह वाला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मौला के सामने। कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मौला के सामने, कहा ये है अदब बारगाह रिसालत का। खेमे लैला क्या होता, ये है इमाम अहले सुन्नत के इश्क रसूल। तसी फरमा दी, इसलाह फरमा दी। एक एक शेर इमाम अहले सुन्नत का देख लो, सरकार की बारगाह में हदीया अकीदत पेश करते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। या रसूल्ला मैं आपको क्या कहूं, सरवर कहूं, मालिक कहूं, मौला कहूं, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूं। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। फिर फरमाते, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बस मैं यही कह सकता हूं कि आप खालिक के बंदे हैं, पूरी खल्क के पूरी मखलूक के आप आका हैं। ये शान इमाम मैंने सुना, इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। और कैसी मोहब्बत, वो जानते थे कि जब तक मोहब्बत रसूल नहीं है कुछ नहीं, ईमान कामिल नहीं है, इंसान मोमिन नहीं है अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जिससे मोहब्बत होती है उससे ताल्लुक रखने वाली सारी चीजें महबूब हो जाती। अगर किसी को सच्ची मोहब्बत है तो वो उसकी आल से भी मोहब्बत करेगा, उसकी औलाद से भी मोहब्बत करेगा, उसके शहर से भी मोहब्बत करेगा, उसके घर से भी मोहब्बत करेगा। हर वो चीज जिसका जाहिरी या बातनी ताल्लुक महबूब से है उसको सारी चीजें महबूब, सारी चीजें महबूब। अब इसका अंदाजा इस वाकये से लगाएं, उस जमाने में पालकी में सफर होता था। पालकी तो किसी ने देखी नहीं हो, आजकल होती नहीं पालकी। अब मैं उसकी मिसाल ऐसे दूं, जैसे जनाजा जिस मसहरी में रखते हैं ना, चार उठाते कंधा देते हैं, इसी को अगर चौड़ा कर लो, ये तो लंबी होती है ना ताकि एक आदमी उसमें लेट जाए, मैयत आ जाए पूरी, इसको अगर और चौड़ा कर लो और उसके ऊपर एक छत सी बना दी जाए, वही पालकी। ये आप तसव्वुर करें, उस जमाने में इसमें सफर होता था। और सफर कैसे होता था, उसमें कोई पहिए नहीं लगे थे, लोग उठाते थे, मजदूर चार मजदूर होते थे, उनसे उजरत तय होती थी, जैसे आप टैक्सी वालों से, रक्षा वालों से, चिंची वालों से तय करते कि भाई फलां जगह जाने कितने पैसे, उसने कहा इतने, आप बैठ के चले गए, पैसे दे दिए। तो उनको कहते थे कहार, जो वो पालकी उठाते थे। फलां जगह जाना है, उन्होंने कहा जी इतने पैसे, ठीक है, उन्होंने जमीन पे वो रख दी, सवारी उसमें बैठ गई, ऊपर छत सी बनी हुई ताकि जैसे औरतें भी बैठे तो बेपर्दगी ना हो, बाद में पर्दा भी होता था पूरा, उसको पालकी कहते। जब बैठ गए, चार मजदूर आए, उन्होंने उठा लिया कंधे पे, अब वो खुद लेके चल रहे, जहां जाना होता पहुंचाते। और एक बात और थी कि रास्ते भी लंबे नहीं होते थे। अगर रास्ते लंबे होते, मसलन आपने पालकी मंगाई औरंगी टाउन जाना है, वो तो बेचारा इन्ना लिल्ला हो जाएगा भाई, औरंगी टाउन आपको कंधे पे उठा के लेके जाएगा तो वो तो बेचारे चारों का इंतकाल हो जाएगा जाते जाते, और फिर यहां की ट्रैफिक नामुमकिन, रास्ते भी छोटे छोटे, यहां से फला जगह जाने उधर जाने वो ले ही जाते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को जाना था, पालकी मंगाई गई, एक सही हुन नसब सैयद, गरीब, घर में फाके, खाने के लिए नहीं, उन्होंने सोचा चलो इन मजदूरों में शामिल हो जाऊं, ये जो पालकी उठाते हैं इनमें शामिल हो जाऊं, कुछ ना कुछ पैसा तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भी मिलेगा एक वक्त का खाना ही हो जाएगा, अपना पेट भर लूंगा, अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का पेट भर, शामिल हो गए। पालकी रखी गई, आला हजरत उसमें तशरीफ फरमा हुए, मजदूरों ने पालकी उठा ली, अभी चंद कदम चले कि वक्त के अजीम मुजद्दिद ने कहा नीचे रख दो, नीचे रखो, नीचे रख दी। क्या हुआ? आंखों से आंसू जारी, बताओ तुम में से कोई ऐसा तो नहीं कि जो आले रसूल हो, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं कि जिसका ताल्लुक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, नसबी ताल्लुक। अब जो सैयद जादे थे वो सर झुका के खड़े, हां मैं हूं। शहजादे फिर तुम ये काम क्यों कर रहे? कहा मेरे घर में फाके हो रहे हैं, गरीबी है, तंग दस्ती है, मैंने कहा इन मजदूरों में शामिल हो जाऊं, कुछ मिल जाएगा, एक वक्त की रोटी मिल जाएगी। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी, आंखों से आंसू जारी हैं, कहा ये तो गुस्ताखी हो गई, मैं सैयद जादे के कंधे पर सवार हो गया, कयामत में अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा जब वो मुझसे सवाल करेंगे अहमद रजा मेरी औलाद के कंधे पर क्यों सवार हुआ, मैं क्या जवाब दूंगा? अब इसका इजाला इस तरह होगा कि तुम पालकी में बैठो, अहमद रजा कंधा देगा। यह है इश्क रसूल, यह है मोहब्बत रसूल, ताकि मैं कयामत में अपने आका को चेहरा दिखा सकूं, मुझसे जो गलती हुई फिर मैंने इजाला भी कर दिया। अच्छा, अब एक बात, किसने बताया कि ये सैयदजादे? सोचने की बात है ना, किसने बताया? उन्होंने तो बताया नहीं था। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जब सच्ची मोहब्बत होती है तो मोहिब महबूब की खुशबू सूंघ लेता, मोहिब महबूब की खुशबू सूंघ लेता है। इमाम अहले सुन्नत सच्चे आशिक रसूल थे, आले रसूल की खुशबू सूंघ ली, वरना चले जाते, मुझे क्या पता कौन है। अरे मजदूरों से कोई हसब नसब पूछता है? अभी भी आप किसी सवारी पे जाएं तो किसी को, रक्षे वाले को रोककर पूछेंगे तू कौन है? पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। उसका काम है सवारी इधर से उधर ले जाना, आपका काम है बैठकर इधर से उधर जाना, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। नहीं, मोहिब ने महबूब की खुशबू को सूंघ लिया। कोई इसमें से सैयद ज्यादा है? कोई इसमें से है? पालकी रुकवाई, पूछा, और उसके बाद कहा इजाला इस तरह होगा, तुम बैठो अहमद रजा कंधा दे, मैं अपने आका को मुंह दिखाने के काबिल हूं। ये है इश्क रसूल, ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो लोग आला हजरत की मोहब्बत का दावा करते हैं और आले रसूल के खिलाफ बात करते हैं, उन पर इतराजात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, कयामत में आला हजरत को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर आज भी आला हजरत आ जाएं तो इन सब को निकाल बाहर करेंगे। एक तरफ आला हजरत की मोहब्बत का दावा, तो फिर उनकी सुन्नत पे भी अमल करो, फिर उन जैसा इश्क रसूल भी पैदा करो। अच्छा वो इंसान जो था क्या वो आलिम था, क्या वो फाजिल था, क्या वो मुत्तकी था, क्या वो परहेजगार था? आज तो देखा जाता है ये आले रसूल है, इनके अंदर तकवा है या नहीं, इनके अंदर परहेजगारी है या नहीं, ये आलिम है या नहीं, ये मुहद्दिस है या नहीं, ये मुफ्ती है या नहीं, इन्होंने कुछ पढ़ा है या नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने आलिम होने को देखा, उन्होंने मुफ्ती होने को देखा, उन्होंने मुहद्दिस होने को देखा, उन्होंने उस मजदूर के तकवे को देखा, उन्होंने किसी चीज को नहीं देखा, सिर्फ आले रसूल होने को देखा, निस्बत रसूल को देखा और उसको कंधे पर उठा ली। ये है इमाम अहले सुन्नत का इश्क रसूल। तो जो आज इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत का दावा करते हैं, उनकी इत्तबा का दावा करते हैं, उनको चाहिए कि उनके अमल और उनकी सुन्नत को भी अपनाएं, तब आला हजरत खुश होंगे। उनकी शान तो ये थी, आला हजरत शाह अली हुसैन अशरफी मियां हम शबीह गौसल आजम कचौचवी नवर अल्लाह मरकदहु, ट्रेन में बरेली से गुजर रहे, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन बरेली से गुजर रही, शहर से खड़े हो गए, खड़े हो गए, मुरीदीन साथ हैं, हजरत आप क्यों खड़े हो गए? फरमाया फकीर इसलिए खड़ा हो गया कि इस फकीर के अदब में बरेली का ताजदार खड़ा हो गया, मुजद्दिद वक्त खड़ा हो गया, वो मेरे लिए खड़ा हुआ, मैं उनके लिए खड़ा हो। ये है मोहब्बत। फिर वही सवाल है, किसने बताया कि शाह अली हुसैन अशरफी मियां बरेली से गुजर रहे? किसी ने मोबाइल पे फोन किया था आला हजरत वो गुजर रहे हैं आप खड़े हो जाइए? किसी ने बताया था? नहीं। किसने बताया? इश्क रसूल ने बताया, मोहब्बत रसूल ने बताया। इमाम अहमद रजा आले रसूल गुजर रहा है, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, उधर आले रसूल ने देखा वो खड़े हो। उनको किसने बताया और इनको किसने बताया? ना उनके पास मोबाइल है, ना इनके पास मोबाइल है, मोबाइल का तसव्वुर ही नहीं है। उनको उन्होंने खुशबू सूंघ लिया, आले रसूल गुजर रहे हैं, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, एहतराम में खड़े हो गए इमाम आले सुन्नत। और शाह अली हुसैन अशरफी मियां ने अपनी निगाहें विलायत से देख लिया, वक्त का अजीम मुजद्दिद मेरे एहतराम में खड़ा है, मैं भी खड़ा हो जाऊं। ये ट्रेन में खड़े हैं, वो बरेली में मदरसे में खड़े, ट्रेन गुजर गई ये यहां बैठ गए वो वहां बैठ गए। ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना अहमद अशरफ जीलानी कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार कलां अल्लामा सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ अशरफी अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, कचौचे शरीफ में मजार मुबारक वहीं हैं, महफिल मिलाद हो रही, बयान कर रही, आले रसूल हैं, रसूल का जिक्र खैर कर रहे, विलादत मुबारका का बयान कर रहे हैं, मीलाद शरीफ बयान कर रहे हैं, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस महफिल में मौजूद हैं, हाथ बांध कर खड़े, आंखों से आंसू जारी हैं, तकरीर सुन रहे हैं और जौक और शौक से उनकी तकरीर सुनने के लिए आते। किसी ने सवाल किया आला हजरत से, आप तो खुद बहुत बड़े इमाम हैं, आप तो खुद बहुत बड़े फकीह हैं, खुद बहुत बड़े मुकर्रर हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर सब कुछ हैं, आप इनकी तकरीर सुनने क्यों आते हैं? कहने का मकसद यह था कि आप तो खुद बहुत बड़े आलिम हैं, आप इनकी तकरीर सुनने आ रहे हैं। जानते हो आला हजरत ने क्या जवाब दिया? फरमाया घर की कहानी घर वालों की जबानी सुनने में मुझे मजा आता, घर की कहानी घर वालों की जबानी सुनने में मजा आता है। अरे इन्हीं के घर की तो कहानी है, यही तो आले रसूल हैं, अपने जद्द अमजद का जिक्र कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा। यह है इमाम अहले सुन्नत के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता यह चला, इश्क रसूल ने उन्हें जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वहां मकबूल है वो हर जगह मकबूल है, और जो वहां से मरदूद हो गया पूरी कायनात में कहीं उसका ठिकाना नहीं। उस वक्त इमाम अहले सुन्नत ने शोहरत हासिल की जब चैनल नहीं थे, जब टीवी नहीं था, जब मोबाइल नहीं थे, कोई जाहिरी जरिया नहीं था, उस वक्त वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। किसने मशहूर किया? इश्क़े रसूल ने मशहूर किया। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरी कायनात में मकबूल कर दिया। लोग कयामत में सैयदों का वसीला पेश करेंगे, कयामत में सैयदों का वसीला पेश करेंगे, सैयदों को पेश करेंगे इनकी वजह से। और मारेरा शरीफ का एक सैयद शाने रसूल मारेर भी फरमाते हैं, कयामत में खुदा मुझसे पूछेगा क्या लेकर आया, मैं अहमद रजा को पेश करूंगा, मैं इसको लेकर आया। ये शान इमाम अहल सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहु। शाह आले रसूल मारेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के एक जलील कदर बुजुर्ग आलिम बाअमल सूफी बासफा इल्म और रूहानियत का मरकज और मंबा आला हजरत तशरीफ ले गए। फरमाया अहमद रजा मेरे पास गौसे आजम की एक अमानत है और वो उनकी औलाद में शाह अली हुसैन अशरफी मियां को देनी है। अच्छा तुम यहां से दिल्ली जाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी दो और उनकी मस्जिद में पहुंचो तो मेहराब में शाह अली हुसैन अशरफी मियां मौजूद होंगे, उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहु मारेरा शरीफ से चले दिल्ली पहुंचे। हजरत निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही उनकी बारगाह में हाजिरी दी मजार मुबारक पर और उनकी मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद की मेहराब में हम शबी है गौसुल आजम शाह अली हुसैन अशरफी मियां रौनक अफरोज। इमाम अहले सुन्नत ने एक नजर उनके चेहरे को देखा और उनकी जबान से निकला, अशरफी ए रुखत आई नए हुसने खूबा, ए नजर कर दाओ परवरदा से महबूबा, कि आप हुस्न व जमाल का ऐसा आईना है जिसमें तीन महबूबों की झलक नजर आ रही। यह आला हजरत ने फरमाया शाह अली हुसैन अशरफी मियां के मुताबिक। फिर उनको पैगाम दिया, फिर वो वहां से मारेरा शरीफ तशरीफ ले गए और शाह अले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह ने अशरफी मियां को कादरिया सिलसिले की खिलाफत अता फरमाई। ये तुम्हारे जद्दे अमजद की अमानत है, यह मैं तुम्हें दे रहा हूं। और उनके बाद किसी को खिलाफत ही नहीं दी, फिर उनका विसाल हो गया। गोया अशरफी मियां शाह अले रसूल मारेरवी के खातमुल खुलफा, खातमुल खुलफा। ये थी मोहब्बत आले रसूल के साथ आशिक रसूल। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि बरेली में अगर आशिक रसूल है तो कचौचे में आले रसूल। तो आशिक रसूल को आले रसूल से जुदा कैसे किया जा सकता? उन्होंने तो आले रसूल की शान बयान की है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया किसने? इमाम अहले सुन्नत ने। लोगों ने बड़े बड़े सलाम लिखे, हर एक का अपना जौक है। शोहरा ने बड़े बड़े कलाम लिखे, बड़े बड़े सलाम लिखे हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में। लेकिन जो सलाम मकबूल हुआ, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम में बज में हिदायत पे लाखों सलाम। जहां भी महफिल मिलाद हो, ग्यारहवीं हो, कोई भी महफिल हो, इमाम अहले सुन्नत का सलाम पढ़ा जा रहा। क्या उन्होंने कहा था कि यही सलाम पढ़ना है? नहीं, बारगाह रिसालत में मकबूल हो गया, पूरी कायनात में मकबूल। विसाल का वक्त आया, फरमाया मेरी कब्र कद के बराबर खोदना। कहा हुजूर ये तो कमर बराबर खोदी जाती है। कहा नहीं, इतनी गहरी खोदना कि जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएं तो अहमद रजा खड़े होकर इस्तकबाल करे और कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम में बज में हिदायत पे लाखों सलाम। यह है उनका इश्क रसूल, यह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने इस नुक्ते को समझ लिया कि शोहरत न तहरीर से है, न तकरीर से है, न तफसीर से है, न तर्जुमे से है, न मुदर्रिस बनने से है, न मुहद्दिस बनने से है। मकबूलियत अगर है तो बारगाह रिसालत में मकबूल होने की वजह से। जिस पर सरकार की नजर पड़ गई वही पूरी कायनात में मकबूल हो। 99 साल हो गए आज आला हजरत को, शोहरत में कमी हुई या ज्यादती हुई? बढ़ रहा, जिक्र बढ़ रहा। क्यों? उन्होंने एक शेर कहा था नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। इमाम अहले सुन्नत का शेर है ना, सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। उन्होंने सरकार के चर्चे का जिक्र किया, सरकार ने ऐसी नजर की कि अब अहमद रजा का जिक्र भी होता रहेगा, उनका भी चर्चा बढ़ता रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लोग जलते रहें, उनका जिक्र होता रहे। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने कहा, मुखालिफीन ने कहा, ढूंढते हैं कोई बात निकले। अब हसद भी है, जलन भी है कि हमारे यहां कोई आला हजरत नहीं, उनके यहां कोई आला हजरत है ही नहीं, उनके यहां तो कोई भी नहीं है, कोई बुजुर्ग ही नहीं है। भाई विलायत तो मिलती है सरकार की बारगाह से, और जो पहले ही गुस्ताख हो उसको कैसे मिलेगी? जितने बुजुर्गान दीन है सब हमारे हैं, गौसे आजम भी हमारे हैं, इमाम आजम भी हमारे हैं, फारूक आजम भी हमारे हैं, रसूल आजम भी हमारे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, बड़ी प्यारी बात कही, आप सुने तो आपका ईमान ताजा हो जाए। उन्होंने कहा, ये बताओ ये हमसे क्यों पूछते हैं, हुजूर को इल्मे गैब था या नहीं था? हमसे पूछते ना, बताओ इल्मे गैब था या नहीं था, बताओ वो जानते थे नहीं जानते थे? हमसे पूछते ना क्यों? इसलिए ही जानते हैं ये हुजूर के हैं, हुजूर इनके हैं। भाई किसी के मुताल्लिक उसी से तो पूछेगा जो उसका होगा। आपके बाप के मुताल्लिक आपसे पूछेंगे, दूसरे से थोड़ी पूछेंगे? मुझसे पूछेंगे इनका बाप कैसा था, आपसे पूछेंगे आपके वालिद कैसे थे, आपसे पूछेंगे आपके दादा कैसे थे। तो हमसे पूछते हैं हुजूर को इल्मे गैब है या नहीं, हम भी बताते हैं हाँ है, हुजूर हमारे हैं, हम हुजूर के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के, अहले सुन्नत अहले जन्नत। तो असल बात तो ये उनमें कोई नहीं, और जब कोई नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, जलते हैं। कहते नहीं आला हज़रत की उर्दू सही नहीं थी, उर्दू सही नहीं जानते थे। हमने कहा था उर्दू सही नहीं जानते थे, आओ उनका कलाम उठाकर देख लो, उर्दू के अल्फाज तो उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते थे, जिसको चाहे इस्तेमाल कर लो। फरमाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमाए यहां तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी महक, तुम्हारी लहक तुम्हारी दमक, जमीनो फलक समा को समक, मिसिक का निशान तुम्हारे लिए। फिर फरमाते सबा वो चले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबां तुम्हारे लिए। ऐसे शेर कहे कि हदीस का तर्जुमा भी कर दिया। सरकार ने फरमाया लिवा उल हम्द मेरे हाथ में होगा, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, बुजुर्गी मेरे पास होगी, मैं जिसे चाहूंगा जन्नत में दाखिल करूंगा। तो फरमाते लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबां तुम्हारे लिए। तो ये तो उर्दू आला हजरत की, अब उनकी उर्दू इनसे मिला लो पता चल जाएगा किसकी उर्दू सही। अरे उनकी तो उर्दू ही सही नहीं है, उनका तो कुछ भी सही नहीं है, उर्दू को क्या कहें। कहने का मकसद यह है, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू, उनके अंदर क्या खसूसियात थी, सिर्फ एक जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। इल्म और फज्ल, तकवा और परहेजगारी, तहारत और पाकिजगी, एहकाक हक, इब्ताल बातिल, एहतराम सादात, मोहब्बत अहले बैत, इश्क रसूल, ये सारी चीजें जिस जात में जमा हो जाए उसका नाम अहमद रजा। अहमद रजा किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं है, एक नजरिए का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, इश्क रसूल का दूसरा नाम अहमद रजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर, और उन जैसी मोहब्बत हमें अता फरमाए, उन जैसा इश्क रसूल अता फरमाए, उन जैसी इत्तबाए रसूल अता फरमाए। आइए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन हम सबको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन जैसी मोहब्बत और इत्तबाए रसूल का जज्बा हमारे दिलों में पैदा। اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز مقامات سے آئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔